कहानी का नाम है उन्होंने हमें जमीन दी। लेखक हैं हुआन रूल्फो। जब आप घंटों ऐसी बंजर जमीन पर चल चुके हों जहां न पेड़ की छाया हो, ना ही पेड़ का बीज और ना ही किसी पेड़ की जड़ें, तब आपको कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देगी। इस अथाह सड़क पर चलते हुए आपको कभी कभार ऐसा प्रतीत होगा कि इसके आगे कुछ नहीं है, कि आपको दूसरी ओर इन दरारों और सूखी हुई धाराओं से कटे हुए मैदान के अंत में कुछ भी नहीं मिलेगा। मगर हाँ, वहाँ कुछ है, वहाँ एक गांव है। आप कुत्तों का भौंकना सुन सकते हैं, हवा में फैले धुएं को महसूस कर सकते हैं, एवं इंसानों की गंध से तर हो सकते हैं, मानो वह आशा की कोई किरण हो। मगर गांव अभी बहुत दूर है, ये तो बस हवा है जो उसे समीप ला रही है। हम लोग भोर से पैदल चल रहे हैं। अभी अपराह्न के लगभग 4 बजे हैं। कोई अपनी आंखों को आसमान में टंगे हुए सूरज की ओर ले जाकर बोलता है, लगभग 4 बजे हैं। ये कहने वाला मेलितो है। उसके साथ है फाउस्टिनो, एस्तेबान और मैं। हम चार हैं। मैं गिनती करता हूँ, दो आगे दो पीछे। मैं थोड़ा और भी पीछे देखता हूँ मगर कोई दिखाई नहीं पड़ता। फिर मैं अपने आप से कहता हूँ, हम चार हैं। कुछ देर पहले 11 बजे के आसपास 20 से ज़्यादा लोग थे, मगर धीरे धीरे वे छितरते गए और अब बस हमारी ये छोटी सी टोली ही बची है। फाउस्टिनो कहता है, बारिश हो सकती है। हम अपने चेहरे उठाकर एक काले घने बादल को ऊपर गुजरते हुए देखते हैं। हमें लगता है शायद बारिश के आसार बन भी जाएं, पर हम अपने मन की बात जबान पर नहीं लाते। हमने कुछ देर पहले ही गर्मी के चलते अपने बोलने की इच्छा खो दी। बातचीत का जो लुत्फ आप अन्य जगहों पर उठा पाते हैं, वह यहाँ दूभर है। अगर आप यहाँ बात करेंगे तो बाहर की गर्मी आपके शब्दों को मुंह में ही तपा देगी और सांस उखड़ने तक सभी शब्द एक-एक कर आपकी जीभ पर सूखते चले जाएंगे। यहाँ हालात ऐसे ही हैं, इसलिए कोई बात नहीं करना चाहता। तभी पानी की एक बड़ी एवं मोटी बूंद टपकती है और जमीन पर छेद बनाते हुए एक गुमड़ा पार देती है, जैसे कि थूकने पर बनता है। वह एक अकेली बूंद ही नीचे टपकती है। हम और बूंदों के गिरने का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती। अब आकाश की ओर देखने पर हम उस तूफानी बादल को आसमान में सरपट तेजी से दूर भागता हुआ पाते हैं। गांव की हवा उसे पहाड़ों की नीली परछाइयों की ओर धकेल रही है, और जो बूंद गलती से गिर भी गई थी, उसे धरती ने तुरंत अपने अंदर समाहित कर लिया है, जैसे कि वह अपनी प्यास बुझाने के लिए सदियों से बेचैन हो। किस बेहुदे ने इस मैदान को इतना बड़ा बनाया होगा? यह किस काम के लायक है? हम फिर चलने लगे हैं। हम लोग बस बारिश को देखने के लिए रुके थे, बारिश हुई नहीं। अब हमने वापस चलना शुरू कर दिया है, और मुझे ख्याल आता है कि हम जितनी देर चले हैं उतनी दूर पहुंचे नहीं हैं। अगर बारिश हुई होती तो शायद कुछ और बातें मेरे जहन में आती। 100 की 1 बात, मैं ये जानता हूं कि बचपन से लेकर आज तक मैंने इस मैदान पर कभी बारिश या उसके जैसी किसी चीज को गिरते नहीं देखा है। नहीं, इस मैदान का कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ ना तो खरगोश दिखाई पड़ते हैं और ना ही कोई पंछी। यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ ले देकर बस थोड़े बहुत बबूल के वृक्ष और कुमलाई हुई जकाटे घास के अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ हम चल रहे हैं, हम चार पैदल। पहले हम घोड़ों पर सवार थे और हमारे पास राइफल थी। अब हमारे पास राइफल भी नहीं बची है। मुझे शुरुआत से लगा है कि हमारे हाथ से राइफल छीन जाना अच्छा ही था। यहाँ पर हथियारबंद होना खतरे से खाली नहीं है। अगर उन्होंने आपको D30 के साथ देख लिया तो आप मौके पर ही बिना किसी चेतावनी के मारे जा सकते हैं। मगर घोड़ों का साथ होना अलग कहानी है। अगर हम घोड़ों पर आए होते तो अभी तक नदी का हरा पानी पी रहे होते और खाना पचाने के लिए सड़कों पर अपने पेट की प्रदर्शनी लगाए फिर रहे होते। हम ये सब कुछ बहुत पहले ही कर चुके होते अगर अभी हमारे पास वे घोड़े होते जो कि शुरुआत में थे, लेकिन उन्होंने हमारी राइफल के साथ हमारे घोड़े भी ले लिए। मैं चारों ओर मुड़ता हूँ और मैदान पर अपनी नजरें दौड़ाता हूँ। इतनी विशाल काय जमीन और रत्ती भर भी काम की नहीं। यहाँ आंखें चारों ओर चक्कर काटती हैं, लेकिन उन्हें कहीं कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जो उन्हें रोक कर रख सके। सिर्फ कुछ छिपकलियाँ ही बिलों से अपना सिर बाहर उघाड़ती हैं और जलते हुए सूरज की तपन महसूस करने के बाद तुरंत ही छोटी चट्टानों की परछाई तले दुबक जाती हैं। मगर हम, जब हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, तो हम सूरज की मार से बचने के लिए कहाँ जाएंगे? क्योंकि हमें तो ये जमीन के टुकड़े फसल उगाने के लिए दिए गए हैं। उन्होंने हमसे कहा था, गांव से लेकर यहां तक सब तुम्हारा है। हमने पूछा, ये मैदान? हाँ, ये मैदान, ये पूरा विशाल काय मैदान। हम स्तब्ध थे, जैसे कहना चाह रहे हों कि हमें मैदान नहीं चाहिए, हमें तो नदी के बगल वाली जमीन चाहिए थी। नदी से लेकर धाराओं तक का वह क्षेत्र जहां आपको सरू एवं परानिरस के पेड़ मिलते हैं और जहां अच्छी जमीन है। यह गाय की चमड़ी नहीं जिसको मैदान बोला जाता है। मगर हमें इन सब बातों को रखने की इजाजत नहीं थी। सरकारी दलाल हमसे बात करने नहीं आया था। उसने हमारे हाथ में कागज थमाए और कहने लगा, अपने पास इतनी सारी जमीन होने से घबराना मत। मगर बात ऐसी है साहब जी कि ये मैदान, यहां पर हजारों प्लाट हैं मगर पानी बिल्कुल भी नहीं है, मुट्ठी भर भी नहीं। और वर्षा ऋतु का क्या? किसी ने ऐसा तो नहीं कहा था कि तुम्हें सिंचित जमीन दी जाएगी? जैसे ही यहां पर बारिश होगी, मकई अपने आप धरती से फूटने लगेगी। मगर साहब, जमीन सूखी और सख्त है। हमें नहीं लगता कि हल से इस चूना पत्थर की खदान को खोदा जा सकेगा। बीज बोने के लिए हमें कुदाली से गड्ढे खोदने पड़ेंगे, और तब भी शर्तिया तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि यहां कुछ उगेगा। यहां पर मक्का तो क्या, कुछ और भी नहीं उगेगा। ये लिखित में दे दो और चलते बनो। तुम्हें जमींदारों के ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए, ना कि सरकार पर जो तुम्हें जमीन दे रही है। रुकिए साहब, हमने केंद्रीय सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। हम तो बस मैदान के बारे में बोल रहे हैं। जिस चीज का कुछ नहीं किया जा सकता, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। हम तो बस यही कह रहे हैं। कृपया रुकिए, जिससे हम आपको समझा सकें। देखिए, शुरुआत से शुरू करते हैं। मगर वह सुनना नहीं चाहता था, और इस तरह उन्होंने हम पर ये जमीन थोप दी। और वे चाहते हैं कि हम इस मिट्टी के तवे पर किसी चीज के बीज बोएं, यह देखने के लिए कि इस पर कुछ उगता है कि नहीं। लेकिन यहाँ कुछ नहीं उगेगा। यहाँ से तो गिद्ध भी अपना पीछा छुड़ाता है। आपको वे हर थोड़ी देर में यहाँ दिख जाएंगे, बहुत ऊपर, तेजी से उड़ते हुए, जल्दी से जल्दी इस सफेद कठोर मिट्टी से दूर जाते हुए, जहां कुछ भी नहीं हिलता। और आप ऐसे चलते हैं मानो सबसे पीछे छूटते जा रहे हों। मेलितो कहता है, यही वह जमीन है जो उन्होंने हमें दी है। फाउस्टिनो कहता है, क्या? मैं कुछ नहीं कहता, मैं सोचता हूं। मेलितो सटक गया है। शायद वह गर्मी के चलते यह सब बक रहा है। गर्मी उसकी टोपी के अंदर घुसकर उसकी खोपड़ी को गर्म कर चुकी है, और अगर ऐसा नहीं है तो वह ये सब अंट-संट बातें क्यों कर रहा है? उन्होंने हमें ऐसी कौन सी जमीन दी है मिली? तो यहां तो इतनी मिट्टी भी नहीं है कि हवा से धूल तक उड़ सके। मेलितो फिर वही राग अलापता है, ये जमीन किसी चीज में तो कारगर होगी ही, शायद ये घोड़े दौड़ाने के काम आए। कौन से घोड़े? एस्तेबान पूछता है। मैंने एस्तेबान की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, अब जबकि वह बात कर रहा है तो मैं उसकी तरफ देखता हूं। उसने एक जैकेट पहनी हुई है जो उसकी नाभि तक पहुंचती है, और उसकी जैकेट से कोई मुर्गी जैसी चीज बाहर झांकते हुए नजर आ रही है। हाँ, वह एक लाल मुर्गी है जिसे एस्तबान अपनी जैकेट के अंदर दबाए हुए है। आप उसकी सुस्ताई आंखें और खुली हुई चोंच को देख सकते हैं, जैसे कि वह उबासी ले रही हो। मैं उससे पूछता हूं, अरे तेबान, तुमने यह मुर्गी कहाँ से उठाई? ये मेरी है, वह कहता है। ये तुम्हारे पास पहले तो नहीं थी? कहाँ से खरीदी?
मैंने ये खरीदी नहीं, ये मेरे बाड़े की ही मुर्गी है।
तो तुम इसे हमारे खाने के लिए लाए हो, है ना? नहीं, मैं इसको अपने साथ लाया हूं ताकि इसकी देखभाल कर सकूं। मेरा घर एकदम सूना था और इसे खिलाने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं इसे साथ ले आया। मैं जब भी कहीं दूर जाता हूं तो हमेशा इसे साथ ले जाता हूं। वह ऐसे अंदर सिकुड़ी हुई घुट कर मर जाएगी। बेहतर होगा उसे बाहर निकाल कर थोड़ी खुली हवा में सांस लेने दो। वह उसे अपने बगल में दबाकर उसके ऊपर गर्म हवा फूंकने लगता है और फिर कहता है, हम कगार तक पहुंचने वाले हैं। मुझे अब एस्तेबान का कहा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। चट्टान से नीचे उतरने के लिए हमने एक कतार बना ली है जिसमें एस्तेबान सबसे आगे है। मैं देखता हूं कि उसने मुर्गी को उसके पैरों से पकड़ रखा है और वह उसे हर थोड़ी देर में इधर से उधर झुलाता है जिससे कि उसका सिर पत्थरों से न टकराए। जैसे जैसे हम नीचे उतरते हैं जमीन ठीक होते जाती है, धूल ऐसे उठने लगती है मानो खच्चरों की टोली यहां से उतर रही हो, लेकिन हमें धूल में लिपटना पसंद है। सूखे मैदान पर 11 घंटे घिसटने के बाद धरती के स्वाद वाली इस धूल में लिपटने में हमें बहुत आनंद आता है। नदी के पास सरू पेड़ की हरी पत्तियों के ऊपर हरी चाचालका चिड़ियों के झुंड उड़ते नजर आते हैं। हमें यह भी खासा भाता है। अब आप निकटता से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुन सकते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि गांव की हवा चकराते हुए तंग घाटी में प्रवेश करती है एवं उसको गांव की आवाजों से भर देती है। जैसे ही हम शुरुआती घरों तक पहुंचने लगते हैं, एस्तेबान फिर अपनी मुर्गी को गले लगा लेता है। वह उसके पैर खोल देता है जिससे वह उन्हें हिलाकर अपनी अकड़न दूर कर सके। फिर वह और उसकी मुर्गी चंद मैस्काइट वृक्षों के पीछे ओझल हो जाते हैं। एस्तेबान हमसे कहता है, अपना साथ बस यहीं तक। हम आगे बढ़ते जाते हैं। गांव के और भीतर उन्होंने हमें जो जमीन दी है वह हमारे पीछे है, चट्टान के ऊपर।